です。オムシャンティ。इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय बहुत सारे स्थूल और सूक्ष्म नियम और मर्यादा है। पीछे आवाज आ रहा है सबको? नहीं आ रहा। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत सारे सूक्ष्म और स्थूल नियम और मर्यादाएं और बाबा ने हमेशा कहा है कि ये मर्यादाएं, ये नियम तुम्हारी रक्षा करेंगे। क्यों रक्षा करेंगे? कैसे रक्षा करेंगे? किससे रक्षा करेंगे? क्योंकि जिससे युद्ध है बहुत ही चालाक शत्रु है, वो माया समय समय पर बात बात में ठगती है। और एक ब्राह्मण आत्मा उसके झांसे में आ जाती है एक एक नियम और एक एक मर्यादा जो बाबा ने दी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक उदाहरण हमेशा हमें याद होता है, एक कुमार एक भाई मधुबन की यात्रा के लिए ट्रेन से जा रहा था। तो जब वो ट्रेन में बैठा था उसके उस कंपार्टमेंट में कुछ बाहर के लोग आकर बैठे और वो लोग ब्रह्मा कुमारी को जानते थे ऐसा लग रहा था। तो वो लोग जब खाना खाने लगे तो उन्होंने इस भाई से कहा आप भी थोड़ा ले लो। तो इस भाई ने कहा नहीं, हम लोग तो बाहर का नहीं खाते। उन्होंने कहा बहुत शुद्ध अन्न है, हमने घर पे बनाया हुआ, बाहर का नहीं है, घर पे ही बनाया। तो उस भाई ने कहा नहीं नहीं हम नहीं खाते, वैसे भी मैं खा चुका हूं, मेरा पेट भरा है। तो उन्होंने कहा कम से कम बिस्किट तो खा लो। तो उसने कहा नहीं मुझे भूख नहीं है। उन्होंने कहा एक बिस्किट खा लो बस, अनटच्ड मैन मशीन मेड है, किसी ने हाथ नहीं लगाया। उसने कहा नहीं नहीं बिस्किट भी नहीं खाऊंगा। पर उन्होंने बहुत आग्रह किया और फिर उन्होंने भी कहा क्या एक बिस्किट खाने से तुम्हारा योग भ्रष्ट हो जाएगा? एक बिस्किट खाने से क्या होता है? तो उस भाई ने कहा चलो ठीक है, और उसने वो बिस्किट खा लिया। और बिस्किट खाने के बाद उसको थोड़ा नशा सा हुआ, आबू रोड कब चला गया उसे पता ही नहीं चला, जब आंख खुली तब अजमेर आ गया था। और उसने देखा उसका सारा सामान गायब। वो कौन लोग थे और क्या डाल के लाए थे बिस्किट में पता नहीं, पर वो जब उठा तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ ले चले गए थे वो लोग। ऐसे बाबा ने बहुत से सूक्ष्म और स्थूल नियम और मर्यादाएं दी, और वो एक एक मर्यादा बाबा कहते हैं तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो इस भट्टी की शुरुआत हम एक विशेष टॉपिक से करेंगे, और विषय का नाम है, कबीर ने कभी अपने एक दोहे में कहा है, माया महा ठगनी हम जानी। हे माया, तू बहुत ठगती है, तेरे रूप अनेक है, तू बहुरूपी है। वो एक ही रूप में हर दिन नहीं आती, हर दिन नए नए रूप में प्रवेश करती है। उसका उमंग उत्साह कभी कम नहीं होता है, ब्राह्मण आत्मा का उत्साह कम हो जाता है, परंतु माया हर दिन नूतन पथ, हर दिन नवीनता। कल की मुरली में था वनोत्सव, वो मनाते हो तुम, उत्सव मनाते हो कांटों से फूल बनाने का। माया कुछ ना कुछ करती रहती है, सुबह की अव्यक्त वाणी। संसार की आत्माओं के लिए बाबा ने कहा, जैसे इच्छा के चक्र में कैसे फंसे हुए हैं, जैसे मकड़ी का जाल, ऐसे फंसा देती है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। फिर कहां से परिपक्वता और कहां से परिवर्तन और कहां भगवान की प्रत्यक्षता। माया स्वयं की प्रत्यक्षता करना चाहती है कि मैं शक्तिशाली हूं। शक्तिशाली कौन है, बाप या माया? बाबा तो कहते हैं माया मेरे से भी अधिक शक्तिशाली है। क्यों? कभी बाबा ने यह भी कहा है बच्चों के लिए कि बाप सर्वशक्तिमान है या बच्चे सर्वशक्तिमान है, और उत्तर बाबा ने दिया, बच्चे बाबा से भी ज्यादा शक्तिशाली है। बाप बच्चों के साथ कंबाइंड रहता है, परंतु बच्चे इतने शक्तिशाली है कि बाप से भी डिटैच होकर अलग होकर माया के पास चले जाते हैं। तो शक्तिशाली कौन हुआ, बाप या माया या बच्चे? तो हमारी लड़ाई एक ऐसे शत्रु के साथ है जो बहुत शातिर दिमाग है, बहुत शक्तिशाली है। शत्रु को कमजोर नहीं समझना, क्योंकि माया कच्चा निगल लेती है अजगर की तरह, बड़े बड़े महारथियों को भी खा जाती है, ऐसा उसका सामर्थ्य है। और शक्तिशाली योद्धा वो है जो माया के हर रूप को जाने, समझे, परखे और स्वयं को सेफ रखे। तो माया के ऐसे कुछ सूक्ष्म रूप है और हमें उसको समझना है, उनको संपूर्ण रीति से समझ लेना, अर्थात उससे मुक्त हो जाना। हम हमेशा कहते हैं कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीट फ्रीडम। संपूर्ण किसी बात की समझ आ गई, उसकी व्यर्थता, उसकी निरर्थकता का पता चल गया, तो अपने आप वो चीज छूट जाती है। हमें संघर्ष नहीं करना पड़ता, लड़ाई नहीं करनी पड़ती, कुछ करना नहीं पड़ता उसके लिए। जब पता चल गया ये चीज व्यर्थ है, जब ज्ञान आ जाता है, तो सारा मोह का अंधकार, सारा अहंकार का अंधकार और मोह की निशा समाप्त हो जाती है। एक छोटी सी कहानी है जो हमें बहुत प्रिय है और बार बार याद कर कर बहुत खुशी होती है। वो कहानी है एक राज्य की। उस राज्य में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाने जाने वाला है और वहां पर एक नाटक खेला जाना था, परंतु समय पर एक 5 वर्ष का बच्चा, बच्ची जिसकी आवश्यकता थी उस नाटक में, वो बीमार पड़ जाती है और उसकी जगह लेने वाला और कोई दूसरा रहता नहीं। अब राजा जो होता है और रानी होती है, उसका एक बेटा होता है, वो भी 5 वर्ष का। टाइम पर, समय पर किसको लाए, इसके लिए रानी सोचती है क्यों ना मैं अपने बेटे को ही राजकुमारी बना दूं, छोटी सी राजकुमारी, किसको क्या पता चलेगा। तो वो जो 5 वर्ष का राजकुमार होता है, उसे राजकुमारी के ड्रेस वस्त्र पहनाए जाते हैं और मंच पर प्रस्तुत किया जाता है, और वो इतना अच्छा अभिनय करती है, करता है, कि सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, बहुत सराहना करते हैं उस राजकुमारी की अर्थात राजकुमार की, और फिर रानी भी बहुत खुश हो जाती है और रानी एक चित्रकार को पुकार बुलाती है और कहती है ये जो मेरा बेटा है जो राजकुमारी के वेश में है उसका एक अच्छा सा चित्र बनाओ यादगार के लिए। तो यादगार के रूप में उस छोटी सी कन्या का अर्थात कुमार का चित्र बनाया जाता है राजकुमारी के ड्रेस में। वो उत्सव पूरा हो जाता है, राजकुमार बड़ा होता है, युवा हो जाता है बहुत सुंदर। और एक बार जब राजमहल में घूम रहा होता है और पुरानी वस्तुएं जहां रखी होती है वहां पहुंचता है तो देखता है एक चित्र है एक राजकुमारी का, और वो चित्र देखकर उसे बहुत आकर्षण होता है क्योंकि वो राजकुमारी बहुत ही सुंदर है। और वो नीचे तारीफ पढ़ता है और तारीफ पढ़ने के बाद उसके मन में आता है अब ये राजकुमारी मेरी ही उम्र की हो गई होगी, और उसे धीरे धीरे प्यार हो जाता है। किसके साथ? राजकुमारी के साथ। और वो फिर उसी के बारे में सोचता है कहां होगी ये राजकुमारी, क्योंकि तारीख के अनुसार उसकी उम्र और मेरी उम्र समान है। तो खोज करने लगता है पूरे राज्य में कहां है वो राजकुमारी, उसे कहीं नहीं मिलती। फिर प्यार में गमगीन, दुखी, उदास, इश्क मोहब्बत प्यार, नींद नहीं, भोजन में रस नहीं, राजपाट सब एक तरफ, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। निरंतर उस राजकुमारी की याद, कहां है वो, कहां है वो, कहां मिलेगी वो। तो वहां के जो मंत्री होते हैं उसके ध्यान में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है, राजकुमार अब वैसा नहीं है जैसे पहले था, उदास रहता है, दुखी रहता है, जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। और वो राजकुमार से पूछते हैं कहो क्या हुआ, परंतु ऐसी बातें किसी को बताई थोड़ी जाती है। तो राजकुमार कहता है कुछ नहीं सब ठीक है। मंत्री कहता है बताओ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, तो वो मंत्री से फिर कहता है कि मुझे प्यार हो गया है। मंत्री जी कहते हैं किससे? वो कहता है उसका नाम मुझे नहीं पता। अच्छा, किस देश की राजकुमारी है? वो भी नहीं पता। कहां रहती है? वो भी नहीं पता। फिर तुम्हें प्यार कैसे हुआ? वो कहता है चलो दिखाता हूं। और वो उस राज मंत्री को, जो कि बूढ़ा मंत्री है बहुत पुराना, उस कक्ष में ले जाता है और कहता है इस राजकुमारी से। मंत्री कहता है पर ये तो छोटी सी कन्या है। वो कहता है नहीं, तारीख पढ़ो नीचे, अब ये मेरी ही उम्र की हो गई है। तो उस मंत्री को पुरानी स्मृति, क्योंकि उस उत्सव में वो मंत्री था, और अचानक उसे याद आता है और वो हंसने लगता है। तो वो राजकुमार कहता है आप क्यों हंस रहे हो? और वो मंत्री उससे कहता है तुम जिस राजकुमारी के प्रेम में पड़े हो वो कौन है? तुम ही हो। और जैसे ही उसे वो याद आता है, समझ में आता है ये तो मैं ही हूं, उसका सारा मोह समाप्त हो जाता है, उसका सारा डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इन्फैटुएशन, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं किसी के प्रति ऐसा आकर्षण, एक सेकंड में समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब सत्य पता चल गया, तत्वमसि, तुम देह नहीं तुम वो हो। न च भाति भूत संघम, ये देह जो दिखाई दे रहा है वो तुम्हारा स्वरूप नहीं। और जैसे ही ये पता चल गया कि ये मैं नहीं मैं वो हूं, हम सो सोहम, अचानक सारा मोह, सारा अंधकार, सारी वो ज्ञान की निशा समाप्त हो जाती है। परंतु ये प्रतीति, ये अनुभव कितना प्रगाढ़ है उस पर निर्भर करता है कितना हम विकारों से मुक्त है। जैसे ही पता चल गया ये विकार, ये कमजोरियां दुख देने वाली है, पीड़ा देने वाली है, और ये स्वरूप मेरा नहीं, मैं तो कोई और हूं। अमृतस्य पुत्रा, तुम अमृत की संतान हो। एक है विकारों से मुक्ति के दो मार्ग, एक तो लड़ाई करना उनसे, पर लड़ाई से बहुत कम विजय प्राप्त होती। दूसरा उनको समझना, उसकी व्यर्थता को समझना। एक अव्यक्त वाणी ऐसी है जिसमें शायद एकमात्र एक अव्यक्त ऐसी एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा है कि तुम्हें विकारों से लड़ना नहीं है, तुम्हें उन्हें हराना नहीं है। यदि तुम उनको हराओ तो जैसे कोई राजा हारता है तो वो बदला लेता है, तुम्हें विकारों को परिवर्तित कर देना है। काम विकार प्रकट है हृदय में, उसको परिवर्तन कर दो, उसकी दिशा परिवर्तन कर दो, क्योंकि उसको दबाओगे, उसका दमन करोगे और ये सोचोगे मुझे जीतना है, तो कभी जीत कभी हार, कभी जीत कभी हार, ये होते रहेगा। उनकी दिशा ही परिवर्तन कर दो, उनका रूप ही परिवर्तन कर दो। उदात्तीकरण, सब्लिमेशन, अध्यात्मीकरण। जो क्रोध इधर आता है वो क्रोध इसलिए आया कि मैं संपूर्ण क्यों नहीं बन रहा, वो क्रोध इसलिए आया कि बाबा को मैं प्रत्यक्ष क्यों नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर सक रहा हूं, क्या ऐसा करूं। जब जगदीश भाई जी इस यज्ञ के पहले समर्पित ब्रह्मा कुमार, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस यज्ञ की वेदिका पर स्वाहा कर दिया, जब अंत में बीमार थे और हॉस्पिटल में थे, तब एक बार उनकी आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि मैं बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाया। ये कौन कह रहा है? कोई साधारण व्यक्ति नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जो इस यज्ञ का चीफ स्पोक्समैन था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस यज्ञ का सारा के सारा लिटरेचर लिखा, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि के लिए कहा जाता है 7 इंच। जिसे भगवान ने संजय कहा, उसने लिखा, उसने कहा कैसे वो आंसू होंगे, कितनी निर्मलता उसमें होगी और कितनी सच्चाई उसमें होगी। तो जब ऐसा ईश्वरीय प्रेम अंदर होगा तब परिवर्तन होगा, जब ऐसा ऐश्वर्य प्रेम का तीर लगेगा तब परिवर्तन होगा और यह रूहानी सफर की शुरुआत। गहरा अनुभव, डीप एक्सपीरियंस, और यह अनुभव किसी भी क्षण किसी भी समय हो सकता है, केवल हमें तैयार रहना है। चेतना को शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है। परमात्मा दिल तप्त बहुत प्योर है और इस तप्त पर वही बैठ सकते हैं जो बहुत प्योर है। दैहिक विचार, दैहिक आकर्षण जिन्हें स्पर्श नहीं करता, ऐसे जिनकी जिनका चित्त शुद्ध है वही इस पर बैठ सकते। सफर बहुत लंबा है, यात्रा में बाधाएं बहुत हैं, परंतु खुशखबरी यह है कि परमात्मा साथ है, परमात्मा छत्र छाया साथ है। आज सुबह की वाणी, संसार की आत्माएं दुखी है, अतृप्त है, तड़प रही है, भटक रही है, प्यासी है, अप्राप्त है, और तुम प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हो। आज बाप दादा किसको देख रहे हैं? प्यूरिटी की पर्सनैलिटी वाली आत्माओं को देख रहे हैं। आज बाबा किसको देख रहे हैं? सर्व प्राप्ति स्वरूप की रियलिटी वाली रॉयल्टी वाली आत्माओं को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? आज बाप दादा स्मृति स्वरूप आत्माओं की रियलिटी को देख रहे हैं। यहां से मुरली की शुरुआत है, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी। जिनमें प्यूरिटी के संस्कार कुट कुट के भरे हैं, और इस भट्टी में सभी एक संकल्प करेंगे संपूर्ण प्यूरिटी का। आज के ही मुरली में एक कदम बच्चों का बाप के पदम कदम, टीचर से मुलाकात। संकल्प करना है संपूर्ण पवित्रता का। हमारी पवित्रता संसार के लिए वरदान है, हमारी पवित्रता प्रकृति के लिए खुराक। संसार की आत्माएं कैसी दुखी है, तो हमें क्या करना है? आज की मुरली से क्या बनना है? दाता बनना है, रहम दिल बनना है, दया करनी है उनके ऊपर, संतुष्ट मणि बनना है, उनके सुख शांति की अंजलि देनी है, उसको दुखों से मुक्त करना है। तीन प्रकार की आत्माएं गिनी, एक वो जो मुक्ति चाहती है भक्ति, और तीसरी शक्ति। मुक्ति भक्ति और शक्ति, जिसे शक्ति चाहिए उसे शक्ति देना, शक्ति से उसे भरना, पावर से भरना, स्पिरिचुअल पावर से उसे भरना। जो भगत आत्माएं हैं उन्हें उनकी भक्ति का फल देना, साक्षात्कार मूर्त तुम हो, और जो मुक्ति चाहती है उन्हें मुक्ति देना। जो से वांछी लतोते लाहो प्राणिजात, ये हमारा कर्तव्य है। इतने महान कर्तव्य, इतनी सारी जिम्मेवारियां, हम स्टेज पर है, हम सब हर समय निरंतर ये संकल्प। तो आज हम माया के ऐसे 10 रूप देखेंगे, जिन्होंने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, हमने सोचा इसको हमने जीत लिया, उसके बाद में भी कोई माया है क्या? उसके बाद में भी माया है, और उसके सूक्ष्म स्वरूप है, और वो इतने सूक्ष्म है कि उसकी गिरफ्त में, उसकी जेल में, उसके कारागृह में, बंदी गृह में बंधने के बाद पता चलता है कि हम बंध चुके हैं। तो माया ठगती है, बहुत चालाक है, नए नए रूप धारण करती है, और हमें इसे परास्त करना है, इसे संपूर्ण रीति से समझकर स्वतः सहज विजय प्राप्त करनी है। सबसे पहला रूप माया का ब्राह्मणों के लिए आलस और अलबेलापन। कौन सा आलस? संसार की आत्माएं दुखी है और हम उनके दुखों से उन्हें सुखी मुक्त नहीं कर रहे, ये आलस है। संसार की आत्माएं विकारों में फंसी हुई है, दुखों में डूबी हुई है, हम उन्हें दुखों से मुक्त नहीं कर रहे, ये हमारा आलस है। अलबेलापन मन का है, आलस शरीर का है। आत्मा जैसे सो गई है, बेहोश हो गई है, भगवान मिला, मुरलियां सुनी, अमृत वेला किया, थोड़ी बहुत सेवा कर ली, और हमने सोचा हमने बहुत कुछ कर लिया, फिर से याद दिला रहे हैं जगदीश भाई जी ने क्या कहा था। ये भाव था कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बहुत कुछ करना बाकी है, और हमने किया कुछ नहीं और भाव यह है कि हमने बहुत कुछ कर लिया। कहां वो अनुभव अतीन्द्रिय सुख का, परमात्म प्रेम का। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था, बाप को ऐसे याद करो कि आंखों से प्रेम के आंसू झरझर गिरने लगे। संसार की आत्माओं के लिए संसार की आत्माएं कितने आंसू बहाती है, पकेट पकेट भर के आंसू बहाती है। भगवान के लिए रोए कितने कोटों में कोई, और कोई में कोई, और कोई में भी कोई है। उसकी याद में अमृत वेला बैठो और ऐसे प्रेम में मगन हो जाओ कि आंसू बहने लगे। बाप कहते हैं ऐसे आंसुओं को मैं क्या करता हूं, लास्ट संडे की मुरली मोती से हीरा बना देता हूं, अपने दिल की डिब्बी में रखता हूं, इतने वो अनमोल है। तो परमात्मा प्रेम को बढ़ाना है। तो हम बात कर रहे थे आलस्य की। इस सभा में ऐसे कितने हैं कि जिन्होंने पिछले एक मास में एक बार भी अमृत वेला मिस नहीं किया। बहुत बहुत थोड़े दिखाई दे रहे हैं। और ये इंद्र सभा है, पिछले 15 दिनों में एक बार भी जिन्होंने अमृत वेला मिस नहीं किया। आज सुबह ही जिन्होंने अमृत वेला मिस कर दिया, आगे पीछे नहीं देखना, सामने देखो सब, नहीं तो हाथ नहीं खड़ा करेंगे। अमृत वेला मिस करना अर्थात संकम युग की सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति को गवा देना। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बच जाए सोने के लिए, फर्स्ट श्रीमत है। सुबह सुबह उठो और भगवान के प्यार में डूब जाओ, प्रभु से बातें करना। अगर अमृत वेला ही मिस और सारे दिन भर केवल सेवा, तो वो सेवा भी माया का रूप बन जाएगी। सेवा में संघर्ष होगा मैं का, सेवा में संघर्ष होगा अहंकार का, सेवा में टकराव होगा। स्वयं को देखना है कौन सी ऐसी बातें हैं जिसमें अभी भी अलबेलापन है। दूसरा है मुरली चिंतन। मुरली पढ़ ली, सेंटर पर चले गए, सबने देख लिया हम प्रेजेंट थे, खतरा समाप्त, अब कोई कुछ कहेगा नहीं। और सेंटर पर जा भी रहे तो डर डर कर, क्योंकि जब नहीं डर जाते हैं तो लोग कहते तुमको माया ने खा तो नहीं लिया। चिंतन, रोज की मुरली से एक दूसरा काम आप सबको दे रहे हैं। रोज की मुरली से 5 टॉपिक्स निकालने। कितने? 5। जब मुरली सुन रहे हैं सेंटर पर तभी 5 टॉपिक लिख देना और सारे दिन भर उन टॉपिक्स पर चिंतन करना। वो चिंतन के लिए अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं, चलते फिरते उठते बैठते। कर्म साधारण हो स्थिति महान हो, बाबा ने कहा है। निरंतर चिंतन, अंदर चिंतन की धारा प्रवाहित हो। जैसे आज की मुरली से प्यूरिटी की पर्सनैलिटी अर्थात क्या, आज की मुरली से सर्व प्राप्ति स्वरूप की रॉयल्टी अर्थात क्या, सर्व संपूर्ण स्मृति स्वरूप की रियलिटी अर्थात क्या, दाता मैं हूं तो मेरे कर्तव्य क्या है, रहम किस पर करना है, संतुष्ट मणि की निशानियां क्या है, धन में भी बरकत होगी बाबा ने कहा। मैं अतृप्त क्यों, भगवान मिल गया फिर भी जीवन अतृप्त क्यों, अप्राप्त क्यों, पाते हुए भी अनपाया ही क्यों रह गया मैं, मिला पर अनमिला सा अनुभव क्यों है, ये चिंतन। तो सबसे पहले क्या करना है, आलस को हटाना है। कौन ऐसे हैं जो मुरली घर पर ही सुन लेते और कहते हैं कि सेंटर पर जाने की क्या आवश्यकता है। एक है सेंटर और एक है घर पर। मोबाइल में सब कुछ है परंतु मोबाइल में सेवा केंद्र का वातावरण नहीं। सेवा केंद्र यज्ञ का किला है, दुर्ग है, अभेद किला। उस किले के अंदर जाते ही वहां का शक्तिशाली प्रभाव काम करने लगता है। इसके लिए उस नियम को पक्का करना है। एक बार ज्ञानामृत मैगजीन में एक आर्टिकल आया था, मुरली न सुनने के 108 कारण। घर में मेहमान आ गए, बारिश हो गई, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, निकल ही रहे थे तो फोन आ गया, घर पे ही पढ़ लेंगे, घर पे ही सुन लेंगे, सेंटर बहुत दूर है, हम बीमार हैं, सारे कारण। तो आलस को उखाड़ कर फेंकना है जीवन से, फिर से स्वयं को तैयार करना है कि कर्तव्यों की स्मृति ही आलस को हटाएगा कि बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत सारे अनुभव अभी करने बाकी है। कल भी कह रहे थे किसी मुरली में, बाबा ने कहा है कि तुमने बातें बहुत सुनी परंतु बातें समय पर याद आ जाना ही तीव्र पुरुषार्थ। ऐसा नहीं कि ये ज्ञानी और अज्ञानियों की सभा है, सभी ज्ञानी है परंतु हां कोई होश में है और कोई बेहोश। भूले हुए तीन प्रकार की निद्रा है, एक है संसार के लोग, एक होती है स्थूल निद्रा, दूसरी है अज्ञान की निद्रा और तीसरी है विस्मृति की निद्रा, जिसमें शायद ब्राह्मण सो रहे हैं, भूले हुए कर्तव्यों को। तो सबसे पहली माया सूक्ष्म मन, स्वयं की चेकिंग करनी है, कहां कहां आलस आता है। सेवा के लिए बुलाया गया है परंतु हम सेवाओं में आलस करते। संगम पर सेवाओं की गंगा बह रही है, जितनी दुआएं कमाना है कमा लो, फिर ये मौका नहीं आएगा। दूसरी माया बहानेबाजी की माया। पहला आलस अलबेलापन, दूसरा बहानेबाजी। जैसे एक गुरु अपने शिष्य से कहता है, जरा देखो तो सही बाहर बारिश आ रही है कि नहीं। वो कहता है नहीं आ रही है, ये देखो बिल्ली बाहर से आ रही है, इसको मैंने हाथ लगाया, बारिश नहीं आ रही। गुरु कहता है जरा खिड़की तो बंद कर देना। वो कहता खिड़की क्यों बंद करनी है, ठंडी हवा अच्छी आ रही है, आने दो। गुरु कहता है चलो दिया तो बुझा दो। वो कहता है दो काम तो मैंने कर लिए, तीसरा तो आप करो। कोई ना कोई सूक्ष्म बहाने हमारे अंदर है, चाहे अमृत वेला उठना, चिंतन करना, या सेवा, या कोई धारणा जो लंबे समय से हम चाहते हैं हो पर नहीं हो रही है। सब कुछ कर लिया परंतु गिर रहे हैं उसमें। मन बहाने ढूंढता है सूक्ष्म, उन बहानों से स्वयं को मुक्त करना है। सब बहाने एक तरफ, जब आदेश आता है, कर्तव्य पुकारते हैं, तो सब बहाने एक तरफ हो जाते हैं। तो सोचो भगवान का आदेश है और ये हर एक की अपनी यात्रा। इस पट्टी में बैठे बैठे ही संकल्प करना है और अपने आप को देखना है। केवल जो बातें यहां बताई जा रही है वो सुनना नहीं है, उसके बीच में स्वचिंतन चालू हो कि ये चीज है जो साथ में चल रही है और मुझे इससे स्वयं को मुक्त करना है। तो बहाना कितना भी रॉयल हो सकता है पर बाबा को ये बाजी पसंद नहीं, बाबा को उड़ती कला की बाजी पसंद है। ब्राह्मणों की भी बहुत सारी कलाएं हैं, 7 प्रकार की कलाएं हैं ब्राह्मणों की। एक है रुक्ति कला, ठहरती कला, जिसमें पुरुषार्थ ठप हो गया है, बंद कर दिया है पुरुषार्थ करना, जिसको करना है करे, हमने बहुत कर लिया, पुरुषार्थ विहीन योग मुक्त और ज्ञान मुक्त अवस्था। कौन सी? योग मुक्त और ज्ञान मुक्त, इस अवस्था में जीवन ठहर गया, ठहरती कला। दूसरी है चलती कला, थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ चालू है, कभी अमृत वेला किया कभी नहीं किया, कभी मुरली सुनी कभी नहीं की, कभी चिंतन किया कभी नहीं, कभी सेवा की, कभी इच्छा हुई तो अचानक प्रकट हो गए परमधाम से सेवा केंद्र पर, बहन जी कुछ सेवा है क्या, और फिर 2 मास के लिए अदृश्य अव्यक्त वतन में कहीं तो अचानक प्रकट होते हैं कोई कोई सेवा के लिए। चलती कला, फिर किसी किसी के तीसरी दौड़ती कला, भाग रहे हैं, पता चल गया हम बहुत पीछे, बहुत लेट एडमिशन ली है, बाकी सब भी भाग रहे, भागना चालू किया, ये अच्छी। और कुछ कुछ जो है वो चढ़ रहे हैं, चढ़ती कला, और कुछ कुछ जो है वो किस कला में है, उड़ती कला में है, बहुत तीव्र गति से पुरुषार्थ चालू है, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है कहीं पर भी, सारा समय सफल हो। जागरण हो चुका है, संगम युग चल रहा है, ये पता है, ऐसा शक्तिशाली अमृत वेला कि जिसमें आंख ऐसी बंद भी ना हो थोड़ी देर के लिए, संपूर्ण जागरण, ऐसा श्रेष्ठ मुरली चिंतन कि वो मुरली और हमारे मन के विचार एक हो जाए, ऐसी श्रेष्ठ सेवा कि सेवा में हड्डियां दे दो, और निरंतर ये भाव कि मुझे स्वाहा कर देना है स्वयं इस यज्ञ में, और फिर है गिरती कला, उसमें कौन कौन है हाथ खड़ा करेंगे, गिरती कला है, गिरती अच्छा शब्द नहीं है, उतरती कला, ये ठीक है सर, पहले बहुत पुरुषार्थ किया और अब कुछ भी नहीं, गिर रहे हैं, पहले सारी धारणाएं की, अब हर दिन एक धारणाएं अपने आप टूट जाती है और दुखी होते हैं और पश्चाताप करते हैं और रोते हैं और खत लिखते हैं पापा को, परंतु दूसरे दिन फिर से वही गलती। हम हमेशा कहते हैं बाबा ने एक मुरली में कहा ये 3 चीजें ब्राह्मण जीवन की रीति रसम नहीं बना देना, 3 P's, पाप पश्चाताप पार्डन, पाप करना पश्चाताप करना और बाबा से फिर माफी मांगना, बार बार ये कर रहे, इसको ब्राह्मण जीवन की रीति रसम नहीं बना देना। तो बहानेबाजी समाप्त। इंग्लिश में एक कहावत है, जो भगवान के मार्ग पर निकलते हैं उनके लिए कहा जाता है, कट द ब्रिजेस थ्रो द लैडर ड्राउन द बोट। ये 3 बातें हैं, जब कोई आर्मी इस ओर से उस ओर जाना होता है, बीच में खाई है, तो एक पुल बांधा जाता है और उधर जाने के बाद पुल को तोड़ देते हैं ताकि इधर वापस आने का कोई चांस नहीं, कट द ब्रिज, ब्रिज को तोड़ दो, उस दुनिया से इस दुनिया में आए हो, अब उस दुनिया में जाने का क्या काम, ब्रिज को तोड़ दिया, अब वहां से हमें कोई लेना देना नहीं, तुम्हारी नैया चल पड़ी है, तुम्हारा लंगर उठ चुका है, तुम हो बेहद के वैरागी, साकार महावाक्य कई बार आता है, कट द ब्रिजेस, वो सारे पुल जो हमें संसार से जोड़े हुए हैं, सूक्ष्म मन के बंधन, लगाओ आकर्षण, कट द ब्रिज, ड्राउन द बोट, जिस नैया से उस किनारे से इस किनारे आए हो, अब इधर आने के बाद वापस उतर जाने का संकल्प नहीं, उस नाव को डुबो दो,
थ्रो द लैडर, जिस सीढ़ी से नीचे से ऊपर चढ़कर आए हो अब उस सीढ़ी को उठाकर फेंक दो। कट द ब्रिजेस, ड्राउन द बोट, थ्रो द लैडर, ये ब्राह्मण जीवन का नियम है। मर्जीवा जन्म है, इसके लिए उधर का कोई बहाना नहीं चलेगा, इसके लिए स्वयं को जगाना है। एक भाई था जो मधुबन में सेवा करने आया था, तो एक बार अमृत वेला योग कर रहा था शांति स्तंभ, तो इतनी भयंकर नींद की नीचे उसके उसको किसी ने कहा क्या कर रहा हूं, उसने कहा सकाश दे रहा हूं धरती को, डाउन झुक झुक के सकाश। एक भाई मिले थे वो अमृत वेला काला गोगल योग में, किसी को पता ही नहीं चलता है आंखें खुली है या बंद। अमृत वेला नींद आ रही है, अर्थात या तो नींद पूरी नहीं हुई, या तो जागरण नहीं है, या तो उमंग उत्साह कम है, कुछ तो है। यदि कोई कमरा है और उसमें कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ ब्राह्मण, और एक ब्राह्मण उसमें से ऐसा है उसे अमृत वेला रोज नींद आती है, 4 बजे उठता तो है पर नींद आती है। सोचो एक दिन उस कमरे में, उस घर में आग लग गई 4 बजे, तब कहेगा कि मुझे सोना है? कहेगा आग लगी है यहां, संसार में भी आग लगी है, विकारों की, हम सो कैसे सकते हैं? तो दूसरा सूक्ष्म माया का रूप है बहानेबाजी। पहला आलस सलबेलापन, दूसरा बहानेबाजी, तीसरा कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंसेस, सुख और सुविधाएं, साधन और सुविधाओं के शैया पर सो ना जाना। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पति को तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। सुख और सुविधा है। यज्ञ में एक समय ऐसा था जब बहुत अभाव था साधनों का, और सबसे ज्यादा तपस्या तभी हुई थी। एक समय ऐसा था मधुबन में जब पार्टियां आती थी तो रहने को स्थान नहीं होता था, तो बड़ी दादी कहती थी जो मधुबन निवासी है सब निकलो अपने कमरे से बाहर, पार्टियों को जगा दो। जब 150 का ग्रुप अगर आ जाए तो जैसे बहुत बड़ी सभा आ गई, सबको अपने अपने कमरे खाली करने पड़ते थे। जितना व्यक्ति साधनों में, संसाधनों में, सुख सुविधाओं में डूबता है, साधना अपने आप कम हो जाती है। क्या करें कि कम से कम साधन, यज्ञ में असंग बहुत साधन है, यज्ञ समृद्ध है अभी, परंतु साधनों में साधना लुप्त ना हो जाए। कुछ है तो सब ठीक, कुछ नहीं है तो भी ठीक। साधनों में, सुविधाओं में डूब नहीं जाना है। तपस्वी जीवन, तापसी जीवन, वैरागी जीवन, तुम वनवाह में हो, बाबा के महावाक्य। अपने जीवन को तपाना है तपस्या से, तप से। और संकल्प करना है कि मुझे तपस्या करनी है। इससे पहले कि क्लास आगे बढ़ाए, सभी फिर से अलर्ट होके बैठेंगे। शुरुआत में हमने मधुबन की यात्रा की थी, अब अपने अंतर जगत की यात्रा करेंगे। सभी स्थिर,
सॉफ्ट म्यूजिक बजेगा। स्वयं को संपूर्ण स्थिर कर देना। इस विशाल सभा में जैसे कि मैं आत्मा अकेली यहां पर बैठी, संपूर्ण ध्यान स्वयं पर। अब तक के ब्राह्मण जीवन पर याद करेंगे वो दिन, जब हम बाबा के बने थे। उस दिन से अब तक कैसे रहा ये सफर, कहां कहां और कब कब माया ने आक्रमण किया, वो कौन से सूक्ष्म स्वरूप थे माया के, सर्वश्रेष्ठ जीवन प्राप्त होने के बाद भी ये जो बीच बीच में दुख आया क्यों, कौन से कारण थे। अपने जीवन को साक्षी होकर देखना, बाबा का आह्वान करेंगे, बाबा आ जा। और संकल्प करेंगे बाबा के सम्मुख, आज से ये जीवन तुम्हारा, तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। अज्ञानवश, मायावश, विस्मृति वश, आलस्य वश, अलबेलेपन के वश जो सूक्ष्म गलतियां हुई, बाबा उन सभी गलतियों के लिए हमें क्षमा कर दो। ड्रामा में क्षमा होती नहीं, हम जानते, परंतु ये क्षमा मन को हल्का कर दे। ये मांगने की क्रिया पश्चाताप का एक भाग है। और दृढ़ संकल्प करेंगे संपूर्ण पवित्रता का, स्वयं के जीवन को निर्विघ्न रखने का, यज्ञ को निर्विघ्न बनाने का, ब्राह्मण परिवार को निर्विघ्न बनाने का,
अनंत शक्तियां बाबा से मुझ में आ रहे,
मेरा एक एक संकल्प शक्तिशाली हो रहा है।
बाबा तिलक दे रहे हैं विजयी भवन।
सारी सूक्ष्म कमजोरियां नष्ट हो रही, कड़े ते कड़े संस्कार पिघल रहे हैं। मैं विजयी आत्मा, मैं बलशाली आत्मा, अनंत शक्तियां मुझ में समाहित,
उसके बाद में चौथा स्वरूप माया का सूक्ष्म, भोजन
कहीं भोजन ही माया ना बन जाए और दिन रात केवल उसी का चिंतन न होते रहे। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात स्वाद से परे, जो इंद्रियों के गुलाम है वो योगी नहीं बन सकते। जहां राजसिक भोजन है वहां इंद्रियां शीतल नहीं हो सकती, इंद्रियों की चंचलता समाप्त नहीं हो सकती। एक एक इंद्रियों में जन जन के विकार भरे। भोजन की तीन श्रेणियां हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। बहुत अधिक मसाले और बहुत अधिक तेल और बहुत अधिक नमक मिर्च, और जो इंद्रियों को उत्तेजित करे वो योगी का भोजन नहीं। अपने डाइट को ठीक करना। जगदीश भाई जी की किताब में एक पूरा आर्टिकल है भोजन पर, लिखा है उन्होंने कि ब्राह्मण आत्माएं कहती है थोड़ा सा तो लिया, परंतु थोड़ा थोड़ा करते करते हथौड़ा लग जाता है और बीमारियां। भरमार है संसार में बीमारियों की। अभी अभी मेडिकल कॉन्फ्रेंस हुई थी पांडव ज्ञान सरोवर में, उसमें बाहर के एक डॉक्टर आए थे, उनका कोई रिश्तेदार जो वो भी डॉक्टर थे वो हॉस्पिटल में आए थे, कुछ थोड़ी सी तकलीफ हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि आपके ज्ञान सरोवर में यज्ञ में जितना तेल प्रयोग किया जाता है वो हम जितना लेते हैं उससे 50 गुना ज्यादा है। भोजन के तीन नियम, सम्यक आहार, वो आहार पहला जो उत्तेजना उत्पन्न न करे, वो आहार दूसरा जिससे आलस और प्रमाद उत्पन्न न हो, इतना खा लिया कि अमृत वेला कब छूट गया पता ही नहीं चला। तीसरा वो आहार जो स्वास्थ्य वर्धक हो, ये तीन आयाम है आहार के, और इसके अतिरिक्त यदि कुछ है तो वो एडिक्शन क्रिएट करेगा। एडिक्शन अर्थात आदत से भी ऊपर लत, खाओ खाओ की इच्छा, दिन रात खाने का ही चिंतन। हमारे पास एक डॉक्टर आते थे, जैसे ही उठते थे तो ब्राह्मण, पर उठते थे 8 बजे, और 8 बजे उठते ही सबसे पहला फोन किचन में, आज नाश्ते में क्या है। तापसी जीवन है, योग आश्रम है, सेंटर और घर दोनों भी। और आहार जितना हल्का होगा उतनी ही स्थिति श्रेष्ठ होगी। मेडिकल में कहते हैं हर व्यक्ति इतना खाता है कि जिसमें वो आधा पेट अपना भरता है और आधा डॉक्टर का। इतने रहम दिल, वो नहीं चाहते डॉक्टरों की दुकान बंद हो जाए, इसलिए बार बार बीमार पड़ते हैं। बार बार जगदीश भाई कहते थे डॉक्टर शॉपिंग, डॉक्टर भक्ति मार्ग में गुरुओं का दर्शन करने जाते थे साधु संत का, ब्राह्मण बनने के बाद डॉक्टर दर्शन करने जाते थे। इतने सारा बीमारी, इतना सारा गलत प्रयोग, हर चीज में तेल ही तेल भरा हुआ। आहार संयमित, आहार मॉडरेट, नहीं तो ये भोजन ही माया बन जाएंगी। स्वामी विवेकानंद ने एक लेक्चर में अमेरिका में कहा है, कहां गया भारत का धर्म? भारत का धर्म कहां गया? उनसे पूछा गया भारत का धर्म क्यों भस्म हो गया, उन्होंने कहा मेरे देश का धर्म भस्म हो गया चूल्हे और चौके में। वेर किचन इज टेम्पल एंड फूड इज गॉड, कहां धर्म का चिंतन और कहां महान चिंतन, इसी में ही भस्म हो गया एक जगह। इसलिए जिसने रसेंद्रियों को जीता उसने जनेंद्रियों को भी जीता। जिसने रसेंद्रियों को जीता उसने काम को भी जीता। जिसने जिह्वा को जीता उसने बाकी सभी इंद्रियों को जीता। योगी अर्थात जितेंद्रिय, योगी अर्थात तापसी, योगी अर्थात शास्त्रों में कहा गया उतना ही खाओ, जब भोजन तब बंद करो जब आधा पेट भर जाए, आधा छोड़ दो, ये भाव रहे कि आधा ही खाया है। अमेरिका का एक प्रेसिडेंट है थॉमस जेफरसन, कभी हो के गया, उसने एक जगह लिखा है क्या हम कभी कम खाने के लिए पश्चाताप करते हैं कि कल सुबह जो नाश्ता किया था मैंने कम किया, इसके लिए आज तक कोई पश्चाताप नहीं किया। क्या करता है कोई कि कल इतनी अच्छी खीर बनी थी, हलवा बना था, मैंने कम क्यों खाया, ज्यादा खाना चाहिए था। हम पश्चाताप किसके लिए करते हैं? ज्यादा खाने के लिए, या कम खाने के लिए किया किसी ने? कल रात में इतना अच्छा ब्रह्मा भोजन था, मैंने 2 ही पोरोटी क्यों नहीं ली, 1 ही बार सब्जी क्यों ली, 2 बार क्यों नहीं ली?
करता है कोई? किसके लिए पश्चाताप करता है फिर? ज्यादा खाने के लिए करता है। भोजन, डाइट, उसके बाद माया का पांचवा स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक माया, डिजिटल माया, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन शॉपिंग। एक भी के भाई है जो मधुबन में हमेशा आते हैं, वो कहते हैं हमारी युगल इतनी शॉपिंग करती रहती है मोबाइल से, एक ही तो बटन दबाना है बाय बस और घर में वस्तु आ जाती है। उसकी इतनी सारी साड़ियां है पुरानी जो अभी तक खोल के भी नहीं देखी और नहीं दिखी कि ऑन ऑफ ऑन। आजकल सब कुछ इससे बाय किया जा सकता है, दबाओ बटन और घर पे वस्तु आ जाती है। ऑनलाइन गेम्स, छोटे छोटे बच्चे किसमें बिजी रहते हैं? गेम्स खेलने। टेररिस्ट, कुछ टेररिस्ट की स्टडीज की गई थी जो आतंकवादी थे, और उन्हें यह पूछा था कि बचपन में तुमको क्या अच्छा लगता था, कौन से गेम्स? उन्होंने कहा था वीडियो गेम्स। कौन से? इधर से ये आया इसको मारा, उधर से मारा, इधर से गाड़ी उधर से गाड़ी, फिर इसको उड़ाया उसको उड़ाया, ये गेम्स उनको अच्छे लगते थे बचपन में। बीज आतंक का बचपन में ही बोया गया, मारने का, हिंसा करने का, मारामारी का। वो बचपन में वीडियो गेम्स खेले और अभी ये खेल रहे हैं, अभी सीधा मनुष्य को मारने का गेम खेल रहे हैं। इसके लिए जो माताएं और जो भाई जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, इससे उनको मुक्त रखना है, नहीं तो वो उस मोबाइल में क्या देख रहे हैं। पैरेंटल कंट्रोल जिसको कहते हैं वो होना चाहिए, नहीं तो यही उसका जीवन नष्ट कर देगा उस बालक का। तो डिजिटल माया सबसे पहले चालू करेंगे टीवी। टीवी कौन कौन देखता है? हाथ खड़ा। इधर बहुत है, बहुत है, एडिक्शन है जबरदस्त, क्योंकि हर सीरियल जो होता है वो उस टाइम पर एंड होता है क्लाइमैक्स, अब आगे क्या होगा उसकी उत्सुकता रहती है, इसके लिए आगे का देखना ही है और उसका कोई अंत नहीं है, नई नई कहानी आती रहेगी। और टाइम चलो कितना भी अच्छा हो, परंतु समय, और हम कहते हैं मुरली चिंतन के लिए समय नहीं, मुरली मनन के लिए समय नहीं, ज्ञान की कुछ बातें लिखने के लिए समय नहीं, क्यों? मोबाइल सबसे पहले माया का रूप था टीवी, और जब माया को पता चला रावण का कि ये ब्राह्मण, पहले रूप था सिनेमा, सिनेमा टॉकीज मल्टीप्लेक्स, जब रावण को पता चला कि ये ब्राह्मण आत्मा है, टीवी इधर तो टॉकीज में जाती नहीं है, तो उसने एक चाल चली, क्या किया, टीवी घर घर में रख दिया। और जब रावण को ये खबर आई कि ये कुछ कुछ ब्राह्मण तो इतने पक्के हैं कि टीवी बंद कर दिया है या बेच दिया या देखते ही नहीं, तो माया ने अपनी, रावण ने अपनी अगली चाल चली, मोबाइल। इससे भी कुछ कुछ ऐसे हैं कि जिनके पास मोबाइल तो है पर उसमें इंटरनेट नहीं है, तो माया ने अपनी अगली चाल चली, इंटरनेट, और उसमें सब कुछ आ गया, एक बटन, एक क्लिक, ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार, ब्रह्मा कुमारी से शूद्र कुमारी, इतनी सहज यात्रा है। इंटरनेट, अंतरजाल, कहां से चालू कर रहे ढूंढना और कहां पहुंच रहे पता नहीं। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, एक मैसेज इधर से, एक मैसेज उधर से, गुड मॉर्निंग का मैसेज कौन कौन भेजता है? थॉट फॉर द डे, हैप्पी गुरुवार सतगुरुवार, हैप्पी अमृत वेला, इसी में लगे हुए हैं, दिन रात यही चालू है मैसेजेस भेजना। क्लास बहुत पावरफुल है, कोई आ गई तो क्या करते हैं उसका सबसे पहले क्या करते हैं? फॉरवर्ड सुनना, बहुत अच्छी क्लास है, पावरफुल। और जिसको मिली वो क्या करता है? कल्याण की इतनी ज्यादा भावना है कि दूसरों को आगे बढ़ाने की, वो क्या करता है? फॉरवर्ड। उसको लगता है ये क्लास उस बहन ने जरूर सुननी चाहिए, ईमेल सेंटर। उस बहन को लगता है ये क्लास तो बहुत अच्छी है, इस माता के बहुत काम आएगी, फॉरवर्ड। उसको लगता है उस कुमार ने इसको सुननी चाहिए, और दो बढ़ा दिए, सुपर पावरफुल क्लास। और वो क्लास ब्राह्मण परिवार में, समाज में घूमती रहती है, अनाथ, उसको सुनने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि टाइम किसके पास है? पर क्लास बहुत पावरफुल है, सुनी नहीं अभी तक, फॉरवर्ड करने में लगे हैं। जब तक हम खुद ना सुन ले और जब तक खुद धारण ना कर ले, अधिकार ही नहीं है उसको आगे भेजने का। भेजने वाले बहुत बैठे हैं, स्टॉप, सुबह से लेके मैसेजेस मैसेजेस मैसेजेस, सारा टाइम उस पे ही जा रहा है। किसने बोला मैसेज करने के लिए? शिव बाबा का भी व्हाट्सएप है, पता है? और उसके व्हाट्सएप में जब बाबा अपना व्हाट्सएप शाम को देखता है तो हमारा लिख के आता है लास्ट सीन 4 AM। उसके बाद में देखा ही नहीं उसको, सुबह देखा था बस 1-4 बजे। उसके बाद में ऐसे डूब गए कार्यों में कि उसकी याद खलास, सुबह एक बार याद किया था बस। तो व्हाट्सएप, मोबाइल, इंटरनेट प्रयोग करना है सेवा के लिए, परंतु वो माया ना बन जाए, उससे उतनी डिटैचमेंट भी चाहिए। सेवा की काम पूरा हुआ बस, लंबा लंबा वार्तालाप, लंबी लंबी बातें, फोन पर लंबी लंबी बातें, अर्थात कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सेवा समाचार है वो दूसरी बात है, अदरवाइज बस 2 से 3 मिनट काफी है, दैट्स इट। और ये मैसेजेस भेजने का सिस्टम बंद करना है। हैप्पी श्राद्ध, श्राद्ध अच्छा हो तुम लोगों का। जिसको जो मर्जी आए वो पकड़ पकड़ के भेजता है, हर चीज को कुछ ना कुछ बना के भेजता है। उसके बाद में पांचवा, फैशन, ये माया का ही एक रूप है। फैशन में भी बहुत सारा है, मेहंदी, गहने, क्रीम, पाउडर, टैटू, टैटू, परफ्यूम। कभी कभी हम बाबा की कुटिया में बैठते हैं तो कुछ कुछ ब्राह्मण जैसे ही प्रवेश करते हैं ऐसा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम कि आधे तो परमधाम से और कुछ सूक्ष्म वतन से सीधा नीचे गिरते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग लगा के आते हैं। वो पूरा कमरे में वो घूमता है और कहते हैं जरूरी है आजकल, हमारे शरीर से बदबू नहीं आनी चाहिए दूसरों को, इसलिए मम्मा ने कभी परफ्यूम लगाया था क्या? मम्मा के सारे पुरुषार्थ गुप्त थे, किसी स्थान पर जाने के बाद मम्मा ये ढूंढती थी यहाँ छत कहाँ पर, ताकि वहां जाकर एकांत में चिंतन करो। व्हाइट, और व्हाइट में भी फैशन। विशेष रूप से बहनों के लिए इस्लाम धर्म में पांच चीजें कही है कपड़ों के लिए। इस्लाम धर्म में पांच चीजें ध्यान रखना काम आएगी। पहला, वो ड्रेस इतना ढका हुआ हो शरीर, केवल चेहरा और हाथ इतने ही दिखे, चेहरा और हाथ। दूसरा, लूज हो, जो वस्त्र पहने जाए वो ढीले हो। तीसरा, नॉन ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी ना हो। चौथा, नॉन ग्लैमरस, चटक भटक, बहुत चमकीला, बहुत सारे कलर जिसमें है, उस टाइप का ना हो। अगला, पुरुषों के जैसा ना हो। जो पुरुष वस्त्र पहनते हैं वो ना हो। और अगला, ऐसा ना हो कि कोई देखे तो उसके अंदर ये लगे ये कोई नास्तिक है, या इस्लाम धर्म की बातें बता रहे हैं। छह चीजें, नॉन बिलीवर है, ऐसा ना हो कि जो कोई देखे और उसके मन में विकार उत्पन्न हो और आकर्षित हो देह की तरफ। ये छह चीजें वस्त्रों के लिए। इसके लिए हमारे वस्त्र बाबा ने जिस तरह की डिजाइन बनाई है, बहनों की और भाइयों की, सर्वश्रेष्ठ डिजाइन है हर रीति से, और वही हमारे वस्त्र है। कफन पहन कर निकले हैं, मृत्यु का क्या डर। परंतु सूक्ष्म इच्छाएं तो बहुत होती है, तभी हुई। कल्चरल प्रोग्राम्स में अपनी वो दमित इच्छाएं पूर्ण कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। साकार मूल्यों में भी आता है पारसी स्त्रियों का उदाहरण, अपने मुंह पर काला लगा लेती है ताकि कोई लट्टू ना हो जाए। साकार मूल्यों में आया है ये पॉइंट। इसलिए जब हमें कोई देखे तो उसे दिव्यता का अनुभव हो, उसे लगे कोई साक्षात देवी खड़ी है, ऐसी रूहानियत, ऐसी दिव्यता हम में हो। सभी, चाहे कुमारियां, माताएं, बहनें, सभी। और भाइयों के लिए ड्रेस कोड जो मर्जी है पहनो। डिसेंट हो, आकर्षित करने वाला ना हो। तपस्वी जैसा हो, नहीं तो ये ड्रेस माया बन सकती है। वैसे तो हम कहते हैं जो ड्रेस पहनना चाहे पहनो, परंतु व्हाइट सुरक्षा करेगा। सन्यासी अपने सन्यास के वस्त्र पहनता है, क्यों? क्योंकि उसे याद रहता है कि ये गृहस्थी है, मैं सन्यासी हूं, ये अलग है, मैं अलग हूं, ये संसार के भोग विलास में डूबे हुए मैं वैरागी हूं, उसके उसके वस्त्र याद दिलाते हैं। वैसे ही ये श्वेत वस्त्र याद दिलाएंगे मैं ब्रह्मा कुमार हूं, मैं वो नहीं कर सकता जो संसार की आत्माएं कर रही है। हमारे उच्च आदर्श है, श्रेष्ठ जीवन है। तो फैशन उसके बाद नेक्स्ट माया का रूप है फैमिलियरिटी, घनिष्ठता, संबंधों में लगाव, फैमिलियरिटी। शुरुआत फैमिलियरिटी से और धीरे धीरे दोस्ती बढ़ती जाती है। विकारों का मार्ग फैमिलियरिटी से स्टार्ट होता है। सबके बीच रहना है, सबके साथ रहना है, परंतु न्यारे और प्यारे, डिटैच्ड, किसी से अत्यधिक लगाव नहीं। लगाव होते ही दुख चालू होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आएगी, उसने ये करना चाहिए, उसने वो करना चाहिए, वो जब नहीं करेगा करेगी तब दुख होगा। जीरो एक्सपेक्टेशन पॉलिसी। किसी से भी घनिष्ठता नहीं, एक से घनिष्ठता, एक से फैमिलियरिटी। बस देहधारियों से फैमिलियरिटी की तो जो पहले जिनके लिए बहुत आदर था, जो बहनें जो बहुत हमको देवियों के जैसे दिखती थी, उनके साथ फैमिलियरिटी हुई, फिर वो भी सामान्य मनुष्य जैसे दिखने लगती है। फिर रूठना और रोसने का खेल चालू होता है, एक मैसेज इधर से, दूसरा मैसेज इधर से, एक व्हाट्सएप इधर से, दूसरा मैसेज इधर से, बस यही चालू है। इसके लिए फैमिलियरिटी माया का स्वरूप है। उसके बाद जी गॉसिप्स। गॉसिप्स को क्या कहते हैं? झरमोई। झरमोई ये माया का अत्यंत सूक्ष्म रूप है और ब्राह्मण परिवार में व्याप्त है। पता किसी का कुछ भी नहीं, परंतु पर चिंतन किए जा रहे। बाइबल में एक उदाहरण है, जीसस क्राइस्ट को सूली लग जाती है, 3 दिन के बाद वो फिर से वापस आता है और उसका एक शिष्य पीटर आकर कहता है, जिसने उसको धोखा दिया था, धोखा इन द सेंस नकार दिया था, ना कहा था, वही पीटर जिसको जब जीसस क्राइस्ट को पकड़ के जाते हैं तो पीटर से पूछते हैं, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? कहता है, मुझे नहीं पता ये कौन है। और बाद में उससे पूछते हैं, हमने तुमको उसके साथ देखा था? वो कहते हैं, वो मैं नहीं था। तीसरी बार पूछते, क्या वो तुम्हारे साथ था? वो कहते हैं, मैं तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। थ्राइस, और ये भविष्यवाणी जीसस क्राइस्ट पहले ही कहता है उसको कि तुम मुझे 3 बार इनकार करोगे। और जब 3 बार इनकार करता है और वो उसे पता चलता है, तब उसको पश्चाताप होता है। और अब जीसस क्राइस्ट जब वापस आता है, फिर से वो पूछता है कि क्या आपका मुझसे प्यार है? जीसस कहता है हाँ। फिर से पूछता है, डू यू लव मी? जीसस सेज यस। डू यू लव मी? यस। 3 बार पूछता है और फिर एक प्रश्न पूछता है, ये जो पीछे जॉन है, क्या तुम्हारा इससे भी प्यार है? जीसस कहता है, व्हाट इज दैट टू यू? तुम्हें क्या करना है, तुम अपने काम से काम रखो। व्हाट इज दैट टू यू? मैं उससे कितना प्यार करता हूं, तुम्हें क्या लेना देना है? तुम अपने काम से काम रखो। पर चिंतन, पर दर्शन, पता कुछ नहीं किसी का। एक व्यक्ति था, उसने दूसरे व्यक्ति पर जबरदस्त आरोप लगाया, ऐसा कलंक लगाया, पवित्रता के ऊपर, चरित्र पर कलंक लगाया, और उसको कोर्ट में घसीट कर लेके गया। और बाद में, तब तक ये बात पूरे शहर में फैल गई, और बाद में कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो ये था कि वो व्यक्ति तो निरपराध है, निष्कलंक है, उसने वो किया ही नहीं है। पर तब तक तो बात तो फैल गई है, तो ये जो व्यक्ति था पश्चाताप करता है, कहता है, मेरे से गलती हो गई, सॉरी। तो वो जज उसको कहता है, ये लो पंख, पंख होते हैं ना, बहुत सारे पंख, एक बॉक्स में देता है और कहता है, घर जाते जाते ये पंख पूरे शहर में फैला देना, और जब कल आओगे तो वो जो फैला हुआ है उसको लेके आना। वो जाता है, पंख फैला देता है, दूसरे दिन पंख मिलेंगे क्या? वो वापिस आता है। क्या जो एक बार कर दिया उसको अब पलटाया जा सकता है। इसके लिए किसी के भी चरित्र का हनन, कलंक लगाना, ब्लेम करना, व्यर्थ की बातें करना, परचिंतन करना, परदर्शन करना, जब हमें कुछ पता ही नहीं किसी के बारे में तो क्या कहेंगे हम, फिर भी हम अनुमान लगा रहे इसका ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, गॉसिप्स बैठना और इधर उधर की बातें, ये सेंटर में क्या हो रहा है, वो सेंटर में क्या हो रहा है, इस बहन के साथ क्या हुआ, उस भाई के साथ क्या, मधुबन में क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, ब्राह्मण संसार समाचार। ये माया का रूप है गॉसिप्स। इससे स्वयं को मुक्त करना है। एक जर्मन फिलोसोफर है जीन पॉल सात्र, उसने कहा है द अदर इज हेल, दूसरा जो है वो नरक है, तुम्हें सोचना ही नहीं है उसके बारे में, स्वयं का सोचो, द अदर इज हेल, व्हाट इज दैट टू यू, तुम्हें किसी से क्या मतलब, माइंड योर ओन बिजनेस। दूसरे घर में, दूसरे पड़ोस में, दूसरे सेवा केंद्र में, दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरे के जीवन में, दूसरे के व्यक्तिगत जीवन में क्या हो रहा है, तुम्हें क्या करना है, और उसकी चर्चा करना और उसका वायुमंडल बनाना और उसको फैलाना ब्राह्मण परिवार में, और वो बात यदि गलत हो गई तो फिर उसको ठीक कर सकते हो क्या, वो पंख जो हमने बिखेरे वो वापस लाए जा सकते नहीं। गॉसिप्स, स्वयं को मुक्त करना है, गॉसिप मॉन्गरिंग, झगमोई छरमोई, तुम्हें ज्ञान की चर्चा करनी है आपस में, कोई मिले तो उनसे पूछना आज के वरदान में क्या था, आज के स्लोगन में बाबा ने ये क्या कहा, ये कौन सा नया शब्द प्रयोग किया बाबा ने, कहां से आया ये शब्द, इसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है, ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, ये चर्चा करो। ये नहीं बोलो तुम भी महाराष्ट्र से और हम भी महाराष्ट्र से, तुम भी पुणे से और हम भी पुणे से, कहो अरे अच्छा तुम भी परमधाम से और हम भी परमधाम से, वाह तुमको मिलकर बहुत खुशी हुई। व्यर्थ का प्रलाप, बातें बहुत टाइम वेस्ट करती है और पाप भी है, किसी की निंदा करना और वो भी ब्राह्मण आत्मा की निंदा, ब्रह्म हत्या के जैसा है, और उसमें भी किसी के चरित्र पर कमेंट्स करना महापाप है, चाहे वो आत्मा कितनी भी गिरी हो कैसी भी हो, उससे हमें क्या, हम किसी के न्यायाधीश नहीं, जज नॉट एंड ई शैल नॉट बी जज्ड, किसी को जज नहीं करो तुम्हें भी जज नहीं किया जाएगा। एच लास्ट, अगला माया का रूप, यह थोड़ा अलग प्रकार का रूप है, हाईली सेंसिटिव नेचर, साइकोलॉजी में कहा जाता है एच एस पी, छुई मुई, टच मी नॉट, थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया उदास, इतना नेचर सेंसिटिव है कि कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, उन लोगों को भी डर लगता है इसको कुछ बोलने से, परंतु अध्यात्म का मार्ग अर्थात कठोर चिकना गड़ा, उसमें टच मी नॉट, हाईली सेंसिटिव नेचर एचएसपी होकर नहीं चलेगा, यहां तो बहुत कुछ सहन करना है इस मार्ग पर, इतने कांटे हैं, इतने कांटे हैं, बस मुरली क्लास से बाहर निकलते ही कांटे लेकर ही खड़े हैं लोग, चुभाओ कांटों का जंगल है, तो सब कुछ सहन करना। हम हमेशा बताते, एक चित्र था, अभी तो पता नहीं कहां चला गया, किसी ने भेजा था, एक चित्र में एक हिरन था, वो जो जवान है उसको एक तीर लगा और घायल होके गिर गया, एक हिरन एक तीर लगा घायल होके गिर गया, अब वही हिरन बड़ा हो गया है, मैच्योर्ड हो गया है, एक दूसरी तरफ खड़ा है, दूसरा चित्र 10-12 तीर चुभे हुए हैं, फिर भी स्थिर होकर खड़ा है। यह है आध्यात्मिक परिपक्वता। हजार घाव है भीष्म की तरह, परंतु अचल डोल है, पूरी छाती छिद गई है तीर से, दूसरों के व्यंगबान, कमेंट्स, अपोजिशन, निंदा, अपमान, ग्लानी, अवमानना, परंतु स्थिर खड़े। कमजोर टच में नॉट होकर नहीं चलेगा, परिपक्व बनना है। तो ये माया के कुछ सूक्ष्म रूप थे। लिस्ट बहुत बड़ी है, इसको कितना भी हम खींच सकते हैं, परंतु आज इसको यही पूरा कर रहे हैं। तो इन रूपों को जानना, समझना और अपने आप को तीव्र पुरुषार्थी बना देना, इन सब से मुक्त हो जाने के लिए जागरण की आवश्यकता है। फिर से एक बार योग में बैठेंगे, फिर ब्रेक लेंगे। इस योग में क्या करना है पहले बता रहे हैं। सबसे पहले सूक्ष्म वतन में जाएंगे। पहली चीज बाबा से दृष्टि लेना, दूसरा बाबा से बाबा के मस्तक से शक्तियां निकल रही है, मुझ में समा रही है, सेकंड स्टेप, और ये रोज करना है। थर्ड स्टेप, बाबा ने अपना हाथ मेरे हाथ में ले लिया है। चौथा, बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। अगला, बाबा मुझे क्या कर रहे हैं, तिलक दे रहे हैं। और उसके बाद बाबा और मैं विश्व की आत्माओं को देख रहे हैं और उन्हें सकाश दे रहे हैं। और लास्ट, बाप समान साक्षी होकर संसार का खेल देखना। तो सभी इस योग अभ्यास को करेंगे अभी, सभी अलर्ट। सर्वंश त्यागी, सन्यासियों में बेहद का सन्यासी, मैं एक चैतन्य आत्मा। मुझ आत्मा से संपूर्ण शरीर में पवित्रता का प्रकाश फैल रहा है। मुझ आत्मा से चहुओर फैल रही, संपूर्ण वायुमंडल पवित्रता की तरंगों से तरंगित, मौन क्रांति आत्मा में सूक्ष्म परिवर्तन का अनुभव। मैं
आत्मा इस तन से निकल कर सूक्ष्म वतन की ओर फरिश्ता स्वरूप धारण कर अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। ये दृष्टि वह जल है जो आत्मा में संकल्प उत्पन्न हुआ है, वह श्रेष्ठ संकल्प अंकुरित होगा, पल्लवित होगा, पटवृक्ष बनेगा, पाप समान बनने का संकल्प लेजर बीम की तरह परमात्मा दृष्टि मुझ पर बाबा के मस्तक से शक्तियों की धारा मुझ आत्मा अदृश्य शक्तियां मुझ में भर रही है। अब बाबा ने अपने दोनों हाथ मेरे हाथों में रख दिए। दिव्य अनुभूति शरीर से कंप्लीट डिटैचमेंट का अनुभव, परमात्मा वरदानी हस्त मेरे सिर पर, मैं जहां जाऊंगा, जहां घूमूंगा, जहां बैठूंगा, परमात्मा छत्र छाया मेरे सिर के ऊपर। बाबा मुझे तिलक दे रहे हैं, विजयी भव, निर्विघ्न भव, सफलता मूर्त भव, पाप समान कर्मयोगी फरिश्ता भव, संसार की दुखी आत्माएं, तड़पती हुई आत्मा आंखों के सम्मुख इमर्ज हो रही। मैं मास्टर दाता रहम दिल दयालु संतुष्ट मणि शक्ति मांगने वाली आत्माएं, भक्ति मांगने वाली आत्माएं, मुक्ति मांगने वाली आत्मा, आत्माओं में बल भर रही, जन जन से की हुई भक्ति का पल उन्हें प्रदान कर रही, दुखों से उन्हें मुक्त कर रही, फरिश्ता
संसार की सभी आत्माओं के प्रति महादानी और वरदानी। सूक्ष्म सकाश सातवा, जैसे मैं इस सृष्टि को साक्षी होकर देखता हूं तुम भी देखो। संसार के इस खेल को साक्षी होकर देखता हूं, दिन और रात, हार और जीत, सफलता असफलता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, संपूर्ण साक्षी भाव। मैं फरिश्ता वापस धीरे धीरे नीचे उतरता, फिर से सूक्ष्मवत से होते हुए स्थूल शरीर में प्रवेश। मैं परम पवित्र फरिश्ता, संकल्पवान शक्तिशाली बलिष्ठ फरिश्ता, ओम शांति।